अब अगली सूरत है रौद, थंडर को कहते हैं, जो बिजली की गरज और चमक है। 43 आयात है इसमें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सूरह है। कायनात में फैली हुई निशानियों पे एक नज़र है। मसलन पहली आयत कुरान हकीम सरापे हक है, अलिफ लाम मीम रो, तिल का आयातुल किताब, ये आयात हैं किताब की, और वो जिसने नाजिल की आप पर अपने रब की तरफ से वो हक है। और लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। कुरान की खूबियों से यह सूरत शुरू होती है। आयत 2 से 4 में अल्लाह ताला की तख्लीक के कुछ और शाहकार दिखते हैं, जिसमें अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, आसमान जो बग़ैर सतूनों के खड़ा है और तुम उसको देख रहे हो। क्या कभी आपको मुझे आसमान के नीचे से गुजरते हुए खौफ आया कि गिर ना जाए? बहुत पुराना है, अंदरून इलाकों में 100-100 साल पुरानी इमारतें गिरा दी जाती हैं। क्या अब ये महदूश हो गई हैं? ये किसी वक्त गिरेंगी? आसमान कितना पुराना है। इसने आदम को भी पैदा होते देखा और उससे पहले के हालात को भी देखा। तो जिस तरह कायनात इतनी पुरानी होकर भी इतनी नई है, जमीन को देखिए, सूरज को देखिए, चांद को देखिए, ये सब कुछ इसमें फलों की बात है, जमीन के टुकड़ों के जुड़ने की बात है। इसी तरह से कुरान भी नया है, एवर न्यू। जब भी आप कुरान पढ़ेंगे आपको नया लगेगा। और जैसे जमीन के टुकड़े हैं ना, इस तरह आपके दिल हैं। ज़मीनें मुख्तलिफ किस्म की हैं, पानी सब पे पड़ता है, लेकिन जो फर्टाइल लैंड होती है उसमें से कुछ निकलता है, बाकी बेकार है। तो कुरान पढ़ने के बाद आप में से खैर निकलेगी इंशाल्लाह, अगर आपके अंदर खैर होगी। फिर आयत 5 से 7 में कुफार के कुछ एतराज़ात हैं। जब भी कुरान पढ़ें तो ये जहन में रखा करें कि मक्का वालों के सामने जब कुरान पेश होता था तो वो इसका क्या रिस्पॉन्स लेते थे, और आज हम इसको पढ़ते हैं तो वो कैसे लेते हैं। अकीदे आखिरत उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका था कि मरने के बाद जीना मुहाल है। इसीलिए अल्लाह कहते हैं, वइन ताजब फाजबुन कौलुहुम, क्या अइज़ा कुन्ना तुराबन। आपको अगर इस पे ताजुब होता है तो इससे भी अजीब बात उन्होंने की थी कि मरने के बाद कैसे जिएंगे। देखिए मक्का वाले तो मुंह से कहते थे ना, आज वाले सुबह हाल से कहते हैं कि मरने के बाद नहीं जीना। क्या आपको आज उम्मत मुस्लिम और पूरी इंसानियत उसके हाल अहवाल देकर लगता है कि इनको मरने के बाद जीने का यकीन है? क्या दुनिया में इतनी बेकायदगी और इतनी नफसा नफसी पड़ी होती? रिवायात से पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत लंबी उम्रें होती थीं। पिछले अम्बिया की कौमों की उम्रें भी बहुत लंबी थी। तो एक बुढ़िया जिसका एक बेटा 100 साल का, दूसरा 200 का, और किस तरह फौत हुआ, तो उसने आकर कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि मेरे बच्चों की उम्रें लंबी हों। तो उस पर हज़रत ईसा ने कहा था कि अम्मा शुक्र करो, हमारे बाद एक ऐसी उम्मत आने वाली है जिनकी शान तो बहुत है लेकिन उनकी उम्रें छोटी हैं। कहा अच्छा, फिर तो वो मिट्टी के घरों में रहेंगे। आज के हमारे विलाज आकर तो देखें। असल बात यह है कि इस दुनिया में दिल लग जाना इस बात की दलील है कि हमें अब आगे जाने का ख्याल कम आएगा। फिर आयत नंबर 8 से 10 में अल्लाह ताला की इल्मे कामिल का ये बयान है। अल्लाह यालमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा, यानी माँ के पेट में जो बच्चे की मूवमेंट्स, बच्चे का पैदा होना, और ये जो वमा तज़दाद कॉन्ट्रैक्शंस तगीदु वल अरहाम, यानी बिल्कुल आप अगर इसको देखें ना तो जो बर्थ पेन्स है ना उसका तस्करा है इसमें। माँ के पेट में बेटा के बेटी नहीं पता। आज डॉक्टर बता भी देते हैं लेकिन हमेशा ठीक नहीं होता, लेकिन कभी गैजेट्स के बगैर तो कोई बता के दिखाए तो क्या पता चला कि माँ के पेट से वो रब तुम्हें जानता है, और कब्र में जाने तक भी उसको तुम्हारे एक एक काम का पता है। और इसमें जो नाम अल्लाह का बड़ा प्यारा आया है, अल कबीरुल मुताआल, बहुत कम लोगों को ये नाम अल्लाह का मालूम होगा। मुताआल, अली नाम हम जानते हैं, अलुफ का लफ्ज़ है, ये वही लफ्ज़ है, आलीशान रब, तारीफ़ का बेहतरीन कलिमा है जिसमें अल्लाह की बुजुर्गी और बुलंद होने का तस्करा है। फिर आयत 11 का थीम लिख लीजिए कि अजाब इंसानों के गुनाहों की वजह से आता है। लहू मौक़िबातुम मिन बैनि यदैही व मिन खल्फिही, और इससे पता चलता है कि हर इंसान के ऊपर अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। रिवायात से पता चलता है कि एक इंसान पे 10 फरिश्ते मुसल्लत होते हैं। कोई उसके नथनों के पास बैठकर कोई चीज़ अंदर ना जाए उसकी हिफाजत कर रहा है, कोई कानों पे, कोई मुंह पे, कोई आंखों पे। कई दफ़ा ऐसा नहीं होता कि बच्चा गिरता है और चोट लगती है, बिल्कुल आँख से करीब चोट लगती है लेकिन आँख बच जाती है, वो फरिश्ता हटा देता है। और इसमें फिर एक असूल है जो कि मौलाना हाली का गालिबन शेर है ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का, वो ये आयत है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। और आज आप अपने इस मुल्क, या जहाँ भी आप बैठे हैं उस पर रख लीजिए। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, अल्लाह हमारे हालात नहीं बदलेगा। लोग कहते हैं सुनाइए पाकिस्तान गए थे, कैसे हालात हैं? तो मैं दर्द के साथ कहती हूँ कि हालात तो मुझे नहीं पता, हालत बड़ी ख़राब है। हमारी हालत दुरुस्त हो जाएगी, हालात खुद ही ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आयत 12 से 13 में आसमानी बिजली अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्द करती है। यह है वो आयत जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरत अर्रात है। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क खौफ़ व तमा, यानी आपको इस सूरत में कायनात की ये चीज़ें बहुत दिख रही हैं, बारिश, तूफ़ान और इसी तरह से सुबह शाम रात दिन। वह युसब्बिहुर्रादु, बाज़ रिवायत से पता चलता है कि सहाबे कराम जब बिजली की कड़क आती तो फिर ये आयत पढ़ते थे, युसब्बिहुर्रादु बिहम्दिही। और राद एक फरिश्ते का भी नाम है जो कि इसी काम पे मुसल्लत है। आपका दिल चाहे तो आप ही पढ़ लीजिए। फिर आयत 14 से 16 का टॉपिक है कि सिर्फ अल्लाह ही को पुकारिए, लहू दावतुल हक, उसी को पुकारना हक है। यानी अल्लाह के सिवा किसी और को आप पुकारें तो ये नाहक बात होगी। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के अलावा किसी और औरत को कहे कि आप मेरी माँ हैं, तो जाहिर है कि वो अपनी माँ का हक नहीं दे रहा। अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना, जिंदा हो के मुर्दा हो, ये नाहक बात है। फिर इसमें एक मिसाल भी दी गई जिससे आप इस बात की बेबसी महसूस करेंगे कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मांगने वाला खुले हाथों से पानी मांग रहा है, एक कतरा भी पानी नहीं आएगा हाथ में। और यहाँ आयते सजदा भी है, आयत 15, जो कि आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं। इसके बाद अगली आयतें बहुत ही प्यारी हैं। 17 से 18 में एक एनालॉजी है, एक मिसाल है, इसको तमासीलुल कुरान कहते हैं, तिमसाल। यानी एनालॉजी देकर किसी चीज़ से साबित करना। और क्या बयान किया जा रहा है? दो मिसालें इकट्ठी हैं, हक और बातिल की कश्मकश। ये दुनिया जिसमें आप और मैं बैठे हैं, इसके अंदर हर वक्त जब जंग चल रही है, हमने हर लम्हे देखना है कि हम किस काफ़िले के साथी हैं। अनज़ल मिनस समाई माल मान, और ये हमारी फेवरेट आयतें हैं। आप सिविल जना कोर्स में से या ऑनलाइन से किसी तफसीर के सर से सूरत रात की आयत 17-18 सुन लें। ऐसी इंसान के अंदर हलचल मचवाती है कि मैं अपनी ज़िंदगी कहाँ ज़ाया कर रहा हूँ। आप देखिए हमारे इर्द गिर्द कितना बातिल है, कितना शर है, कितनी गंदगी है, कितने फितने हैं, और हम कुछ नहीं कर रहे, इतने ठंडे बैठे हैं। तो जब आपके अंदर हक का साथ देने की तड़प पैदा होती है ना, तो साथ ही अल्लाह ताला फिर आपको हक का साथ देने वालों की सिफात बताते हैं, जो इससे अगली आयतें हैं 19 से 24, कि अगर आप चाहते हैं कि आप हक का साथ दें तो ये सारी लिस्ट आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी, कि जिसमें यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करना, नाप तोल में कमी ना करना, रिश्तों को जोड़ना, अल्लाह का खौफ रखना, आखिरत के हिसाब से खौफजदा रहना, और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करना, नमाज़ों को कायम करना, और अल्लाह के दिए में से जाहिर करके और छुपा के दोनों तरह से खर्च करना, और बुराई का जवाब भलाई से देना। क्या हमारी लिस्ट में ये सब कुछ है? अगर है तो मुबारक हो आपको, जन्नात व अदनी यदखुलूनहा। अल्लाह ऐसे लोगों को खुशखबरियाँ देते हैं कि वो ऐसी जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे। क्या सिर्फ वही? नहीं, उनके बापों और उनकी औलादों में से भी जो डिज़र्व करते होंगे उनको भी अल्लाह डाल देगा। ये नज़रिया आगे जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आगे बहुत ही प्यारे लफ्ज़ों में मिलता है। इतना समझ लें कि अगर जन्नत में जाएं और पता चले कि बच्चे तो आए ही नहीं, तो जन्नत कैसी होगी? सारे आगे एक बच्चा नहीं आया, खुशी होगी? तो ये आयतें पढ़कर अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी साथ ही रखें। फिर फरिश्तों के वेलकम करने की बात है, और आगे आए 25 से 27 में हक के दुश्मनों का किरदार है। जहाँ भी हक बात होगी ना, वहाँ दुश्मनियाँ ज़रूर होंगी। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की बात करके आपको मुझे जो सीखने की बात बता दी कि वल्लज़ीन यनकुदून अहदल्ला, पीछे क्या था, यूफून या यनकुदून। तो दुनिया में हक और बातिल साथ साथ चलता है। कुछ लोग नेकियों की दावत देते हैं, कुछ बुराइयों को पेश करते हैं। आपका मेरा काम क्या है? मुख्तसर सी ज़िंदगी में हक का साथ दीजिए, ना कि बातिल बेकार चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दे। फिर आगे बड़ी फेमस आयत है जो अक्सर ही लोगों को आती है, आयत 28:9 में क्या है, दिल इत्मीनान पाते हैं अल्लाह ताला के ज़िक्र से। अल्लज़ीना आमनू व तत्मईन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब। आज की इंसानियत परेशान है, दुखी है, पीस पीस पीस, लव केयर नहीं मिलता। तो यहाँ क्या पता चला कि दिल की ग़िज़ा अल्लाह की याद है, और जो लोग ईमान लाकर अमल साले करेंगे उनके लिए तूबा है, खुशखबरी, जन्नत का एक दरख्त भी है बहुसनुमा। आप क्या पता चला कि अल्लाह की याद कैसे मिलती है? अल्लाह से मोहब्बत से। और हर दिल जिक्र करके मुतमईन होता है। रिवायत से पता चलता है कि मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो तड़पती है, पानी में डाल दें तो खुश है। दिल के लिए जिक्र पानी की तरह। फिर ईमान वाले अल्लाह ताला के जिक्र से इत्मीनान पाते हैं, और खुशी पाने का, इत्मीनान पाने का, राहत पाने का सबसे बड़ा जरिया कुरान है। आप एक ट्रिंक्वालिटी फील करते हैं, इत्मीनान, खुशी कुरान की महफिल में। बाज़ दफ़ा लोग इसी खुशी में सो ही जाते हैं, इतना सुकून मिलता है। लोग कहते हैं नींद नहीं आती, मैंने कहती अब कुरान तो खोलिए, आप 2 सफ़े भी नहीं पढ़ेंगे आपको झोंके आएंगे, और जब आपको कुरान समझ आ रहा हो तो कैसा होगा। कोई जिक्र का खुद साख्ता तरीका भी नहीं है, जो तरीके अल्लाह के रसूल ने बता दिए। इस पे एक हदीस है, आपने फरमाया कि उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है, और इसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता, जिंदा और मुर्दा जैसी है। याद करने वाला जिंदा है और ना याद करने वाला मुर्दा है। ये बुखारी की रिवायत 6407 है। तो जिक्र करने का मतलब ये कि याद भी रखो। अच्छा, आप कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और साथ आप फिल्में देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ आप शिकवे कर रहे हैं। ऐसा ना कीजिए। याद दिल में होती है, तस्करा जुबान पे होता है। तो जब तस्बीह पे कुछ पढ़ें या उंगलियों पे पढ़ें तो साथ उसको फील भी कीजिए। फिर उसके बाद आगे आए 30 से 31 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान की दिलजोई की जा रही है कि देखिए ये नहीं मानेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। जिसको नहीं मानना, कज़ालिक अरसलना कफी उम्मा, ए नबी आप फिक्र ना करें, आपकी तरह हमने पहले भी नबी भेजे, लेकिन जिनको नहीं मानना था नहीं मानेंगे। असल में मुतालबे बहुत करते थे मक्का वाले, ये हो जाए वो हो जाए ये वो। अल्लाह कहते हैं इस कुरान के जरिए हम पहाड़ों को चला दें, ज़मीन फटने लगे, मुर्दे कलाम करने लगे, ये फिर भी नहीं मानेंगे। जिसको कुरान की तासीर से फ़ायदा ना हुआ, वो कुरान के इन मौजज़ों से कैसे फ़ायदा उठाएगा? लिहाजा आप इनको छोड़ दीजिए। और आगे हक के मुखालिफिन का बुरा अंजाम दिखाया जा रहा है, आयत नंबर 32 से 35 में, वलकदिस तुख जिया बिरुसुलि मिन कबलिक, ए नबी गम न कीजिए, आप जैसे नबियों का पहले भी बहुत मजाक उड़ाया गया, और आज इसको ले लें। अक्सर लोग दीन की तरफ क्यों नहीं आते, कहते लोग मजाक करेंगे, इस्लामिक हाल हुलिया क्यों नहीं अपनाते, लोग मजाक करेंगे। तो आपके मेरे लिए भी इसमें खुशखबरी है, रब राजी तो जग राजी। फिर इसमें उनकी जो पकड़ हुई उसकी बात है, बस्तियां जो तबाह हो गई जो कायम है उनकी बात है, और सबसे बड़ी बात कि ये सब तो चंद दिन की बात है। मसलुल जन्नत अल्लती वुइदल मुत्तकून, देखो तो सही वो जन्नत उसकी मिसाल क्या है जो के मुत्तकियों को जिसका वादा दिया गया, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, उकुलुहा दाइम, उसके मेवे उसके फल हमेशा रहने वाले हैं। यानी वहाँ आउट ऑफ सीजन नहीं है कुछ, वहाँ कोल्ड स्टोरेज के ऑरेंज आपको नहीं खाने पड़ेंगे, वहाँ आम आपको सर्दियों में नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ आपको हर मौसम में हर वक्त चीज़ मिलेगी। क्या पता चला कि इस दुनिया में 4 दिन की मुश्किल है, काट लो, जैसे तैसे गुजरता वक्त गुजार लो, लेकिन बातिल के साथ समझौता नहीं करना। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद बातिल, गलत काम नहीं करना। इसको आप देखेंगे आए 36 से 37 में, केवल लजीन आते ना हमल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी है वो तो खुशियाँ मनाते हैं इसके साथ जो नाजिल किया आप पे अल्लाह ने, जो आपकी तरफ नाजिल हुआ, लेकिन एक गिरोह इससे नाखुश भी है। क्या पता चला ये कुरान कुछ लोगों के दिलों को खुश कर देता है, उनका दिल ही कुरान की महफिल में लगता है, वो एक से उठते हैं दूसरी में चले जाते हैं, कभी सुन रहे थे कभी पढ़ने लग जाते हैं, कभी देखने लग जाते हैं, कभी छोटी कभी बड़ी बात, क्यों? कि दिल लग गया। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा दिल भी कुरान के साथ लगा दे। और आगे फिर आए 38 से 40 में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान एक कश्मकश, एक वो कह लीजिए एक रस्साकशी जो थी वो चल रही थी। वलकद अरसलना रुसुलम मिन कबलिक, और हमने आपसे पहले भी कई रसूल भेजे, हमने बनाई उनकी बीवियाँ और उनके बच्चे। देखिए क्या आयत है ये, अंबिया कराम को सारी ज़िंदगी गारे हिरा में या कोहे तूर पे जाके नहीं बैठे, वो तो एक मुजाहिदे के दिन होते हैं जब अखज़ करना होता है। आज भी पढ़ाने से भले किसी से फालतू बात करने को दिल नहीं करता, कि कहीं मेरी कोई सोच, मेरी कोई जज्बाती कैफियत इस कुरान के पढ़ने पढ़ाने पे असरअंदाज ना हो। लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि आप पढ़ने पढ़ाने वाले किचन में नहीं जा सकते, वो खाना नहीं पकाएंगे, वो कपड़े नहीं धोएंगे। हम खवातीन हैं, याद रखिए, माँ, बहन, बेटी, औरत इससे ऊपर नहीं जा सकती। आपको अल्लाह ने दीन दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्द है, वो तबलीग में जाए, वो जिद्दोजहद करे, लेकिन इसके बावजूद वो कमाएगा। तो अपनी बेसिक जिम्मेदारियों को छोड़कर आप कोई और काम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपको सारे कामों के बीच में, खाते बीते पीते बीते, अम्बिया कराम मेहनत करते थे। तो हमारा दीन क्या है कि बेअमल होके ना बैठ जाओ, दूसरों पे ना नजरें रखो कि वो आपके सामने ट्रे रखें और आप खा लें और वो उठा लें और आप बस फिर काम कर रहे हैं दीन का। तो ये आयत बताती है कि नबी इंसान थे, हाँ इंसानों में बहुत आला थे। फिर आयत 39 नोट कर लें, ये तकदीर से मुतल्लिक है। यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है मिटाता है, वह युस्बितु, और जो चाहता है साबित रखता है। वह इंदहु मुल किताब, इस पे भी लेक्चर्स मौजूद हैं, तकदीर का मौजू हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा मिस अंडरस्टूड टॉपिक है। तो आप इस पे लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। जब मैं इस साल पाकिस्तान आई तो मुझे बच्चियों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला। आप पता है कि 80% उनके क्वेश्चंस तकदीर से मुतल्लिक थे, जिससे मुझे लगा हमारी नस्ल परेशान है। हमारे साथ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, हम ये सोचते हैं, माँ बाप ये करते हैं, मैं उस लड़के से शादी करना चाह रही हूँ, ये नहीं है, वो नहीं। तो इस मौजू को भी सीखने की ज़रूरत है। और याद रखिए, इसका ताल्लुक अकीदे से है। ईमान बिल कदर ईमान का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद मुखालफीन जो हक के हैं, यानी हक के मुखालफों के लिए एक धमकी है, आयत 41 से 43 में, जिस पे सूरत पूरी हो रही है, जिसमें बताया क्या चाह रहा है। अवलम यरऊ अन्ना नाति लर्दा, क्या वो नहीं देखते कि हम ज़मीन को ला रहे हैं किनारों से उसको घटाते हुए। यानी कुफर ख़त्म हो रहा है और इस्लाम फैल रहा है। साइंटिफिकली भी देखिए तो दुनिया में अब पानी बढ़ता जा रहा है, खुश्की कम हो रही है। इस आयत की कई किस्म की तफसीर हैं, कुछ साइंस से मुतल्लिक और कुछ हक हक के गलबे से मुतल्लिक। लेकिन आपको मुझे इसमें जो बात याद रखनी है वो क्या है कि इस्लाम फैलेगा, हम उसमें हिस्सेदार बने कि ना बने ये हमारी मर्जी है। अल्लाह ने नबी सल्लम के ज़रिए क़ुर्बे क़यामत की जो बातें हमें बता दी हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलेगा, कुफर दबता जाएगा, हक आएगा, बातिल जाएगा, तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो उस वक्त तो पूरी दुनिया में फिर इस्लाम आ जाएगा। दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हमारे ज़रिए ये काम ले ले। उसके बाद अब एक और ख़ूबसूरत सूरत अम्बिया के नामों में से, सूरत इब्राहिम। पीछे कौन सी पढ़ी, सूरह यूनुस, सूरत हूद और सूरत यूसुफ, मुस्तकिल 3 सूरतें आईं। फिर रात के बाद अब सूरत इब्राहिम, 2 और आगे आएंगी, सूरत मोहम्मद और सूरत नूह। तो हज़रत इब्राहिम का तो नाम सुनते ही दिल खुशी से भरता है। तो 52 आयात है इसमें। बहुत प्यारे तरीके से नज़ूले कुरान का मकसद बताती है ये सूरत, ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। और हज़रत इब्राहिम की दुआओं से भरी हुई खूबसूरत सूरत है। मसलन आयत नंबर 1 का टॉपिक क्या है, कुरान क्यों नाजिल हुआ, आप इसको नोट कर लें। और जहाँ कहीं कोई महफिल कुरान के नाम पे सजे, चाहे वो इसाले सवाब हो, हसूले सवाब हो, किसी की आमीन हो, किसी की बिस्मिल्ला हो, ये आयत थोड़ी बहुत सुना दीजिए कि अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैक, हमने ये किताब आपकी तरफ नाजिल की, लितुख्रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाएं, बेइज़्नि रब्बिहिम, रब के हुक्म से, किस तरफ, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, गालिब तारीफ़ किए गए के रब की तरफ। तो पता चला ये किताब दुनिया के अंधेरों को दूर करती है। देखिए, हमारे स्कूलों में बचपन से हम सुनते आए अलामा इकबाल की एक पोएम, अमूमन सुबह असम्बली में पढ़ी पढ़ाई जाती है, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। ये आयत है, किसी ने आज तक उसका मतलब नहीं बताया था, सिर्फ ट्यून अच्छी लगती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और ये तमन्ना कब पूरी हुई, जिस दिन कुरान का नूर हाथ में आया। और यही नूरुल कुरान है, कुरान का नूर हर दिल में हर हाथ में, इनलाइटन द हार्ट्स विद द नूर ऑफ अल कुरान। दुआ कीजिए कि आज डिप्रेशन में, परेशानियों में और उलझनों में जो हमारी नस्ल जा चुकी है, उनको हम कुरान का नूर दें। और शिकवे करने से क्या होगा, एक एक चिराग जलाते जाइए, एक दिए से दिया जलेगा, इंशाल्लाह अंधेरे दूर होंगे। फिर आयत टू से थ्री में कुफार कौन है, यहाँ बड़े गौर से देखिएगा, वइलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद। अल्लाह कहते वइल है उन लोगों के लिए जो कुफर पे हैं। अब लफ्ज़ कुफर के साथ हमारे जहन में हमेशा डिसबिलीवर, नॉन मुस्लिम ना, अल्लज़ीन यस्तहिब्बून अल्हयात अद्दुनिया अलल आखिरा। कुरान की आयत इस बात की दलील है कि दुनिया की मोहब्बत में चूर हो जाना, आखरत से बढ़ के दुनिया का हरीस होना और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक कर टेढ़पन करना, इसको भी यहाँ कुफर कहा गया। असल में कुफर ना शुक्रपन है, हाइड करता है काफिर अल्लाह ताला की नेमतों को। अल्लाह हमें हक का दोस्त बना दे, दुश्मन ना बनाए। आयत 4 में तबलीग के अव्वलीन मुखातिब हम जुबान लोग। मुझे उर्दू आती है ना, तो मुझे उर्दू वालों में बात करनी चाहिए। अब जिनको फ्रेंच आती है, मुझे क्या करना है उनके लिए? मैं कुछ ऐसे बच्चों, लड़कियों, यंग लोग जो फ्रांस में ही हैं, वहीं पले बड़े, जिनकी फ्रेंच बहुत अच्छी है, उनको कुरान सिखा दूं, वो मुझसे उर्दू में लें और लिखें फ्रेंच में, और उसके बाद फिर वो अपनी ज़ुबान में काम करें। इंग्लिश में बोलने वाले बच्चे इंग्लिश की ज़ुबान में कंफर्टेबल है, नॉर्वेजियन में बोलने, नॉर्वे में पलने वाले नॉर्वेजियन में, तो यहाँ अल्लाह ने कह दिया कि ज़ुबान बड़ी बात है। वमा अरसलना मिन रसूलिन, और नहीं भेजा हमने कोई भी रसूल मगर उसी की कौम की ज़ुबान से। तो हमेशा कोशिश करें कि ज़ुबान से बच्चों को ना काटें। और मैं अक्सर उन पेरेंट्स को ये बात कहती हूँ और आपको भी कह देती हूँ, अपने बच्चों को कभी उर्दू से ना काटें। आप अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, इधर उधर, क्यों? इसलिए कि उर्दू अरबी से बहुत मिलती है। हम क्लासेस लेते हैं, हमें अंदाज़ा है कि उर्दू में लफ्ज़ी तर्जमा याद कराना कोई मुश्किल ही नहीं है, इंग्लिश में और मुश्किल, और फ्रेंच और नॉर्वेजियन और डच और दूसरी लैंग्वेजेस में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक बदल जाते हैं। तो ज़ुबान बड़ी अहम है। फिर उसके बाद आयत 5 to 6 में अल्लाह का खौफ, अल्लाह के दिनों के हवाले से, जिन दिनों में अल्लाह ताला की कोई बड़ी बात हो जाए, जैसे सैलाब आ गया, तूफान आ गया, जलजला आ गया, तो उसको अय्यामिल्लाह कहा जाता है। इधर असल में बनी इसराइल की मिसाल देकर जो पैगाम दिया गया, और बेशक हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियों के साथ ताकि निकलवाए अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी की तरफ और याद करवा दे उनको भी अय्यामिल्लाह। तो अय्यामिल्लाह, शाह वलीउल्लाह देहलवी ने इसको इल्म कुरान का एक पांचवा बड़ा सतून करार दिया है, यानी मेमोरियल डेज। आप ये लिख सकते हैं कि वो दिन मेमोरियल बन जाते हैं जिसमें कोई अल्लाह की तरफ से आफत आती है ताकि इंसान उनको याद रखे और नाफरमानियों से बचे। फिर आयत 7 to 8 में नाशुक्री से नेमत छिन जाती है और शुक्रगुजारी से नेमत बढ़ जाती है। व इस्ताज़ना रब्बुकुम, और जब आपके रब ने पुकारा, लाइन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करोगे, लाजीद अन्नकुम, मैं तुम्हें और दूंगा, हाँ वलाइन कफर तुम, अगर तुमने नाशुक्री की, इनकार किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अजाब बड़ा शदीद है। इससे क्या पता चलता है कि शुक्रगुजारी बढ़ानी है। आप देखिए कि जितना किसी इंसान का भी आप शुक्र करेंगे ना, वो अपनी नेमत बढ़ाएगा। किसी ने आपको दाल चावल भेजे, आप खाने के बाद उसको दुआ देते हैं, आप तारीफ़ करते हैं, आप शुक्रिया अदा करते हैं, आप कहते हैं ऐसी दाल तो मैंने कभी खाई नहीं, और सच बोलें, झूठ नहीं। अगली दफ़ा जब वो दाल पकाएगा ना, आपका हिस्सा पहले से डाल लेगा। और अगर आपको कोई जो भी भेजे नेमत, और आपके हम तो खाते ही नहीं, और वो आकर 2-3 दिन बाद देखे तो वो खाना फ्रिज में रखा है, बाहर पड़ा है, क्या अगली दफ़ा भेजेगा? तो अल्लाह के नबी की वो हदीस याद रखिए, मल्लम यशकुरे ना सलम यशकुरिल्ला, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता ना, वो अल्लाह का भी नहीं करता। कोई आपको खिलाता है, कोई पिलाता है, कोई आपके लिए कोई चीज़ लाता है, दिल की गहराई से उसका शुक्रिया अदा कीजिए। तो नेमत देने वाले का आजजी, इनकसारी और मोहब्बत से एतराफ़ करना, इसको शुक्र कहते हैं। फिर इसके बहुत से दर्जे हैं, ज़ुबान से, दिल से, अमल से, यानी उन नेमतों को इस्तेमाल करके फिर नेमत देने वाले को राज़ी भी रखिए। इसके बरक्स नाशुक्रा शख्स कौन है? इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं कि जो शख्स नेमत को पहचानता है मगर नेमत देने वाले को नहीं पहचानता। मसलन आज हम मखलूक में खो गए और खालिक को भूल गए, इसी तरह नेमत और नेमत देने वाले को पहचानता है मगर नेमत का इनकार करता है। तो आज हमारा हाल है, जैसे आप देखिए कि माँ बच्चे को खिलौना लेकर दे, तो बच्चा खिलौने में इतना खो जाए कि माँ की बात भी ना सुने, तो उसने क्या किया? खिलौने में खोकर खिलौना दिलवाने वाली माँ की कदर ना की। बच्चे ऐसा करे तो हमें बड़ा बुरा लगता है, और हम दिन रात शायद यही कर रहे हैं। फिर इसके बाद ना शुक्रा शख्स कौन है, नेमत और नेमत देने वाले को पहचानता है, इसका इकरार भी करता है, मगर नेमत देने वाले के लिए आजजी इख्तियार नहीं करता, ना उससे मोहब्बत रखता है, ना उससे राज़ी होता है। ये इमाम इब्ने कय्यिम का कौल है। क्या आज हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ऐसा तो नहीं बन चुका? अब सवाल ये है कि शुक्रिया अदा करना क्या है। नंबर एक, नेमत और नेमत देने वाले को पहचानना। फिर दूसरी बात है नेमत का इकरार करना। फिर तीसरी बात है कि नेमत देने वाले के लिए आजजी इख्तियार करना, इससे मोहब्बत करना, इससे राज़ी हो जाना, अपनी नेमत को देने वाले की महबूब और इताअत के कामों में महबूब जगह, यानी नेमत देने वाले की पसंदीदा जगह और इताअत के कामों में खर्च करना। ये खुलासा है पूरे दीन का। आंखें, कान, हाथ, वक्त, गाड़ी, घर अल्लाह ने दिया, बस इन नेमतों को अल्लाह के रास्ते में लगा दीजिए। इंशाल्लाह हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आगे अब कौमों के साथ नबियों की कशमकश है। आयत 9-10 में रसूलों की अपनी कौमों के साथ कशमकश। अलम यातिकुम नबउल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। आप देखिए कि हज़रत नूह, आद, समूद और उनसे बाद अली कौमों के नाम लेके कहा गया कि अपने वक्त के रसूल की कदर नहीं की, शक करते थे, इल्ज़ाम लगाते थे, और फिर रसूलों का आजिज़ाना जवाब आयत 11-12 में मिलता है। कालत लहुम रसुलहुम, कौमों ने इतनी मुँह मारी की कि रसूलों ने उसके ऊपर फिर उनसे बात की कि देखो हम कुछ नहीं हैं मगर बशर तुम ही जैसे, यानी तुम हमारे साथ इतना झगड़ा किस बात का करते हो, हम तो सिर्फ वो कर सकते हैं जो हमारे बस में है। और फिर आयत 13-17 में रसूलों को छुटलाने वालों का इबरतनाक अंजाम है। वक़ालल्लज़ीना कफरू, और उन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफर किया अपने रसूलों से, अलबत्ता हम ज़रूर तुमको अपनी ज़मीन से निकाल देंगे, और अगर नहीं है तो बस एक ही सूरत है कि तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ। देखिए नबी सल्लम की हिजरत हो या हज़रत ईसा की हो, हर दौर के रसूल को लोगों ने इसी तरह धमकियाँ दी और हिजरत पे माइल कर दिया। अल्लाह आयत 18-21 में कहते हैं कि अल्लाह की पकड़ से डरते रहो, रसूल अल्लाह का नुमाइंदा होता है। इसलिए यहाँ अब कुफार के कुछ अमाल जो कि वो दुनिया में कर भी रहे होते हैं उनके ज़ाया होने की बात करके अल्लाह कायनात पे कुछ गौर व फिक्र करवा के पैगाम क्या देते हैं, ई यशयुस्खिबकुम वयाति बिखल्क़िन जदीद। इतना ना करो, तुम अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं हो, अल्लाह तुम्हें उठाकर दूसरों को ले आएगा और अल्लाह के लिए ये मुश्किल नहीं। उसके बाद आयत 21 में और उससे आगे क़्यामत का एक मंज़र है। वो लोग जो अल्लाह के सिवा दूसरों से जुड़े रहे, क़यामत के दिन वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से लान तान कर रहे होंगे, और सबसे बढ़ के शैतान की अपने पैरोकारों को मलामत। आयत 22-23, यानी ये है वो मुकालमा जो क़यामत के दिन शैतान बोलेगा। अल्लाह के नबी सल्लम अपने उम्मतियों की सिफारिश करेंगे, वो लोग जो सारी ज़िंदगी आपके तौर तरीके पे चलने की कोशिश करते रहे, आपके मिशन को फैलाते रहे, अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए उनको खैर देंगे। ये अमल देखकर शैतान के पैरोकार उसके पास आएंगे कि भई देखो ना, उनके नबी ने तो उनको इतना फ़ायदा दिया, तो हम भी तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे पीछे रहे, अब तुम हमारी मदद करो। तो हदीस में था कि शैतान उठेगा और इतनी बदबू उठेगी उसके साथ, और फिर वहाँ जाकर ये सारा जुमला है। काश हम इसके ऊपर दुनिया में गौर करें। वक़ाल शैतानो, और कहेगा शैतान जबकि मामले पूरे हो जाएंगे, यानी किसने जन्नत में जाना किसने जहन्नुम में, तो शैतान के लफ्ज़ क्या हैं, बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा किया और वो वादा सच्चा था, और वादा तो मैंने भी तुमसे किया लेकिन मैं तो अपने वादे को खिलाफ कर रहा हूँ, और वैसे मेरा तुम पर कोई जोर भी नहीं था, हाँ बस मैं तुमको पुकारता रहता था और तुम फौरन कबूल कर लेते थे। कहते ना कि वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था। शैतान के भरोसे पे गुनाह करने वालों का उस दिन हाल क्या होगा? फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, आज मुझे मलामत ना करो, खुद को मलामत करो, आज मैं तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकता, ना तुम मेरी कर सकते हो। मुझे बताइए क्या ऐसे शख्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए? कहने लगा आज मैं सारे उस शिर्क से जो तुम मेरे साथ कर रहे थे या मुझे अल्लाह का बड़ा बना रहे थे उसका इनकार कर रहा हूँ। इसके बरक्स वह खिलल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले किए वो उन जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें होंगी, हमेशा रहने वाले उसमें, और तहियतुहुम फ़ीहा सलाम, वक्त मुलाकात उनका तहिया क्या होगा, अस्सलामु अलैकुम। तो आज दुनिया में आंखें खोल कर जिए इंसान, इसलिए भागे आए 24-27 में बहुत ही खूबसूरत मिसालें हैं अच्छे और बुरे नज़रियात को समझने के लिए। आए 24 में अच्छे नज़रियात की हैं और 5 में भी, और 6 से 7 में बुरे माहौल की बातें हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ मोमिन को एक दरख्त से तशबीह दी, अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसला, क्या बस तुमने नहीं देखा कैसे बयान करता है अल्लाह एक मिसाल एक कलिमा तैयबा की, जैसे वो एक दरख्त हो, उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं और उसकी शाखें बहुत ऊपर हैं आसमान तक। वो फल देता है पूरा साल हर वक्त अपने रब के हुक्म से, और अल्लाह इसी तरह बयान करता है लोगों के लिए मिसालें, शायद वो सोच लें। यहाँ हम ज़रा से एक मिसाल से समझते हैं। आप देखिए कि मोमिन एक शजरे तैयबा होता है। आपने दिन रात हज़ारों दरख्त देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में। ताल्लुक़ बिल्ला जब मजबूत होता है ना, तो शरीयत की पाबंदी आसान हो जाती है। और मोमिन जो होता है ना, ये नफ्स को दबाने वाला भी होता है, उसकी ज़िंदगी बड़ी पाकीज़ा होती है और वो इंसानियत को नफ़ा देने वाला होता है। इसको समझने के लिए ज़रा से दरख्त बनने के प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डलता है, जैसे कि किसान ज़मीन में बीज डालता है। आप इस पिक्चर में देखें तो एक छोटा सा बीज है जिसको पानी दिया जा रहा है, पानी के वही इलाही कुरान। क्या इस महफिल में बैठकर आपको अल्लाह से मोहब्बत महसूस होती है? बस यही वो पानी है। फिर इसके बाद बंदा मोमिन का दिल है, पौधे को पनपने के लिए अच्छे बीज, ज़रख़ेज़ ज़मीन, उम्दा खाद, पानी और सूरज की ज़रूरत होती है। ये आपका अच्छा माहौल है, जितने खुले माहौल में आप जिएंगे उतना ग्रो करेंगे। अब आप देखिए, शुरू में ये बीज था, अगली पिक्चर में आप देखिए कि उस बीज के नीचे जड़ें बन गई और पतली सी कोंपल है। ये जो जड़ें हैं ना, ये हमारे दीन का मेन हिस्सा है, जिसको अकायद कहते हैं, ताल्लुक़ बिल्ला, ताल्लुक़ बे रसूल और ईमान बिल आखिरा। इसका दूसरा नाम अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने रमज़ान से पहले 4 डेज़ का जो ज़ादुल खैर किया इस साल, उसमें हमने इस्लाम ए टू ज़ी किया, और इस पर हमारा एक पूरा कोर्स है 1 महीने का। 4 वीक्स में हम पहले वीक में अकीदा, दूसरे में इबादत, तीसरे में मामलात और चौथे में अखलाकियात पढ़ते हैं। हमारी तरतीब बिगड़ी हुई है इस वक्त, तो इसको दुरुस्त करने के लिए इसको सुनिए। तो क्या पता चला कि जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है, अल्लाह का मुकाम समझ आता है, रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ बनता है, उसकी ज़िंदगी समर जाती है। और एंड पे देख लीजिए, एक दरख्त फल से भरा पड़ा। जब पौधा तनावर दरख्त बनता है तो माहौल की खूबसूरती में इजाफा होता है, वहाँ ऑक्सीजन आती है, लोग पत्थर मारते हैं और वो फल फेंकता है। तो मोमिन दरख्त होता है, इसकी तफसीर में हम पूरा एक तकाबुल करते हैं, मेरे लिए 20-25 पॉइंट्स, मोमिन वर्सेस ट्री। तो अल्लाह करे कि हम ईमान के सरसब्ज दरख्त बन जाएं और पार्शल दीन को छोड़कर इधर से उधर, किसी का अकीदा ख़राब है तो उसकी इबादत कैसे कबूल होंगी, और अगर इबादत नहीं है तो मामलात कैसे होंगे। तो लिहाजा इस मौजू पे मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। और बस फिर अब पारे का एंड शुरू हो रहा है 28 से 30 में, ना शुक्री करने वालों का अंजाम है कि अलम तारा इल्लज़ीना बदलु नेमतुल्लाह, यानी जब अल्लाह कोई नेमत दे और लोग उसको बदल दें और कुफर में चले। ये वो लोग हैं नबियों के उम्मती, जिनको अल्लाह ने अम्बिया कराम की दौलत दी लेकिन उन्होंने उनकी कदर ना की। और फिर आए 31, रोज़े क़यामत कोई लेन देन या रिश्तेदारी काम ना आएगी। अल्लाह कहते हैं, मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुल्ला बय्युन फ़ीही वला ख़िलाल, आज भी हमारे साथ लोग होते हैं लेकिन काम वही आता है जिसको अल्लाह किसी काम का बना दे। अमल की बात क्या है? दुनिया में अपने आप को और अपने रिश्तेदारों को अल्लाह की पसंद का बनाने की कोशिश करनी है। फिर 32 से 34, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं किया जा सकता। आप ये आयत बच्चों के साथ शेयर करें। मैंने एक दफ़ा बच्चों से शेयर की कि आप बेटा गिनिए आपको अल्लाह ने क्या नेमतें दी हैं। 2, 4, 6 गिन के चुप हो गया। मैंने कहा, और फिर मैंने कहा, अच्छा आप काउंट डाउन योर बॉडी पार्ट्स, फिर तो पूरी लिस्ट थी ना। तो वाइन तउद्दु नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, इस वक्त भी हम सोचें कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, लेकिन इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ्फार, इंसान बड़ा ही नाशुक्रा और जुल्म करने वाला है। और फिर सूरत का भी एंड और पारे की भी तक एंड की तरफ जा रहे हैं, आय 35 से 38, हज़रत इब्राहिम की पाकीज़ा तमन्नाएं जो दुआओं की सूरत में मिलती हैं। पहले पारे के एंड में हमने देखा था कि खाना काबा की तामीर के दौरान इब्राहिम ने जो दुआएं की थी, आप देखते हैं कि वो उम्मत की दुआएं थी। यहाँ ख़ास तौर पे रब्बी जल हाज़ल बलदा आमीना, मक्का के लिए दुआ। फिर बच्चों को और खुद को बुत परस्ती से रोकने की दुआ। क्या पता चला कि रूहानी, जज्बाती और जिस्मानी सब जरूरियात को इब्राहिम ने अल्लाह से मांग लिया। शिर्क से बचने की दुआ, दिलों में मोहब्बत की पैदा होने की दुआएं, फलों से रिस्क मिलने की दुआएं, अमल की बात क्या है कि बच्चों की दुनिया भी मांगिए, आखिरत भी मांगिए। हम अपने बच्चों का दुनिया का मुस्तकबिल भी अच्छा मांगे और आखिरत का भी मांगे। और 39 से 41 में इब्राहिम की ईमान अफरोज़ दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब, वो ज़ात जिसने मुझे दिया बुढ़ापे में इस्माइल और इसा। क्या पता चला कि अगर अल्लाह आपको बहुत बुढ़ापे में भी औलाद दे दे तो आप उस पर भी मायूस ना हों कि अल्लाह ऐसा कर सकता है। और फिर ख़ास तौर पर रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, अपनी और अपनी औलादों की नमाज़ों की फ़िक्र करना। और रब्बना अग़फ़िरली वाली आयत में देखिए माँ बाप और मोमिनीन की दुआएं। तो ये दुआएं कुरान की ये साबित करती हैं कि अगर हम सिर्फ़ कुरान और हदीस की दुआएं भी मांग लें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सब कुछ आ जाता है। और फिर नमाज़ कायम करके अहले ईमान की बख्शिश की दुआ क्या बता रही है कि मोमिन का दिल बहुत खुला होता है। फिर आयत 42 से 45 में रोज़े क़यामत नाफ़रमानों का क्या हाल होगा। बहुत ही, यानी कह लीजिए कि दिल पे बोझ पड़ता है इन आयतों को पढ़ के, कि जिसमें अल्लाह उनके एक एक बॉडी एक्शन की बात करके बयान कर रहे हैं कि जहन्नुम में जाकर चीख रहे होंगे रब्बना अख़िरना इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, नुजीब दावत तक, हम तेरी दावत को कबूल करेंगे, व नत्तबी रसुल, तेरे रसूलों की पैरवी करेंगे, पर अब क्या फ़ायदा। तो ज़रूरत है कि ज़िंदगी में ये काम किए जाएँ। और आयत 46 से 47, अल्लाह के रसूल इस्तकामत का पहाड़ थे, इसीलिए वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाही मकरहुम, वो बहुत तदबीरें भी करते रहे नबियों के ख़िलाफ़, लेकिन अल्लाह अपनी तदबीरों से उनको टालता रहा, लिहाजा आप अल्लाह पे नज़रें रखिए। और फिर आयत 48 से 51 में रोज़े क़यामत आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे, पूरी दुनिया का एक नक्शा ही बदल जाएगा। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दी, बहुत बड़ा इवेंट होना होना तो घर में कई चीज़ें इधर उधर कर दी जाती हैं, कुछ ऐसा ही है। लेकिन इसको पढ़ते वक्त ज़रा सा सोचिए क्या मंज़र होगा। व बरज़ुलिल्लाहिल वाहिदिल कहार, वो पेश किए जाएंगे अकेले अल्लाह के सामने जो अलकहार भी है। व तरल मुजरिमीन यौम इज़िन मुक़र्रनीन फ़िल असफ़ात, तुम देखोगे मुजरिम उस दिन जंजीरों में जकड़े होंगे, सराबीलुहुम मिन क़तिरान, गंधक के कुर्ते पहनाए गए होंगे। व तख्शा वुजूहहुमुन नार, और उनके चेहरों पे आग लपक रही होगी। क्यों? लियज़ी अल्लाहु कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, ताकि अल्लाह हर नफ्स को उसकी जजा दे जो उसने किया, क्योंकि इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। अब कैसे लोगों का कुफर ख़त्म हो, उसका जवाब सूरत के एंड पे आयत 52, हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये लोगों को पहुंचा देना है ताकि वो डर जाए और वो जान लें कि अन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, कि अल्लाह एक है, और अक्ल वाले नसीहत ले लें। तो ये आयत मुसलमानों को उनका मनसब याद करवाती है कि लोग कुफर पे मर रहे हैं और तुम अपनी मौजें कर रहे हो, अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। और फिर सूरत हिजर की बस एक आयत इस बारे में है, जिसका टॉपिक क्या है कि ये आयात हैं किताब इलाही और कुरान मुबीन की। अलिफ लाम रॉ, तिलका आयातुल किताबी व कुरान मुबीन, ये आयतें हैं किताब की और बयान करने वाले कुरान की। इस दुआ के साथ इस पारे को पूरा करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियां इस किताब की नशर व इशात में खपा दे, और हमारे घरों का बच्चा बच्चा इसके एक एक लफ्ज़ को समझे। जज़ाकुमुल्लाह खैरम व अहसनुल जज़ा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।